भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धुर्जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे कृष्णा। जो भी भक्तों ने अपने मोबाइल फोन लाए हो कृपया उसका मुंह बंद कर दे ताकि प्रवचन में बाधा उत्पन्न न हो। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के इस रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। गोवर्धन लीला से 8 शिक्षाएं और हम प्रथम शिक्षा पर हैं। देवराज इंद्र का भगवान ने मान चूर चूर किया, अभिमान चूर चूर किया गोवर्धन धारण कर। और देवराज इंद्र हालांकि जब उन्हें पता लगा कि कितनी बड़ी गलती उनके हाथों हुई है तो उन्होंने अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहा, इच्छा थी परिवर्तन लाने की, प्रयास भी किया, परंतु परिवर्तन उनके अंदर पूर्ण रूपेण नहीं आ पाया क्योंकि दृढ़ निश्चय नहीं था। और हम हमारे पिछले कुछ सिटिंग से एक श्लोक ले रहे थे इसी गोवर्धन लीला से, जहां पर देवराज इंद्र पश्चाताप कर रहे हैं, परंतु पश्चाताप के साथ साथ वो भगवान को ये भी कह रहे हैं कि जब तक पूर्ण रूप से आप मुझे परिवर्तित नहीं करोगे तब तक मुझसे ऐसी गलतियां होती रहेंगी। और उस तात्पर्य में हमारे आचार्य लिखते हैं कि यहां देवराज इंद्र भगवान को एक प्रकार से दोषी बना रहे हैं कि आप करोगे तभी होगा, आप नहीं करोगे तो मुझसे तो नहीं होने वाला। और इसी दशम स्कंद में आगे चलकर उन्होंने इसी प्रकार की गलती फिर की पारिजात वृक्ष के संदर्भ में। तो हम परिवर्तन पर चर्चा कर रहे हैं हमारे पिछले कुछ सिटिंग्स में। पिछली बार हमने परिवर्तन के विषय में क्या हमें कदम उठाने चाहिए अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए, इसके ऊपर चर्चा की। तो थोड़ा रिकैप हम लेंगे कुछ स्लाइड्स का। फर्स्ट स्टेप टू बी टेकन इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट चेंज विद इन अस, बिगिन विथ स्मॉल चेंजेस। एक बार हमने ये उदाहरण दिया था, अमेरिका में एक एयरलाइंस है जिनका बजट ओवरशूट हो रहा था और वो एयरलाइंस लॉस में जा रही थी, अमेरिकन एयरलाइंस। तो उनकी बोर्ड मीटिंग्स हुई कि ये लॉस को हम कैसे भरें। तो एक बोर्ड मेंबर ने एक ऐसा सजेशन दिया जो कि उस समय बहुत ही बचकाना सा लगा, चाइल्डिश। और उनका सजेशन था कि हम लोग जो कस्टमर्स को, पैसेंजर्स को मील्स प्रोवाइड करते हैं और वो पैक्ड मील में हम सैलड प्रोवाइड करते हैं और उस सैलड में हम एक ऑलिव देते हैं उनके, जो कि बहुत कॉस्टली है। तो वो जो ऑलिव फ्रूट है वो अगर हम निकाल दें हमारे मील्स के सैलड से तो हम पूरे साल भर बहुत बचत करेंगे। आप लोग यदि जानते हैं ऑलिव इतना सा एक फल है वो पाश्चात्य देश का, तो सब लोगों को हंसी आई इस प्रस्ताव के ऊपर। परंतु फिर भी उन्होंने सोचा कि लागू करने में क्या हर्ज है, और उन्होंने लागू किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, $40,000 उस साल उन्होंने बचाए अपने ऑनबोर्ड फ्लाइट मील्स के सैलड से। एक ऑलिव निकालने पर $40,000 उनके साल के बचे। पॉइंट क्या है? स्मॉल चेंजेस। तो कई बार हम जब सुनते हैं हमारे फिलॉसफी में कि हमें शत प्रतिशत शुद्ध होना है भगवत धाम जाने के लिए, 100% प्योर डिवोटी बनना है, तो कई बार ये प्रपोजल इतना फारफेस्ट लगता है, इतना बड़ा एक हिमालय पर्वत हमारे सामने लगता है कि हम कदम बढ़ाना ही छोड़ देते हैं। फिर इतने हताश हो जाते हैं, मैं शुद्ध भक्त, भगवत धाम इस जन्म में असंभव। कई बार कलयुगी बुद्धि के वजह से हम जानबूझकर कोई कदम नहीं उठाना चाहते ताकि हम इस भ्रम में रहें कि मुझसे नहीं होने वाला। एक है मुझसे नहीं होने वाला, एक है मैं नहीं करने वाला, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। तो यदि हमारे अंदर हमको परिवर्तन लाना है तो हमें सबसे पहले बेबी स्टेप्स से शुरुआत करनी है, स्मॉल चेंजेस। फिर हमने सस्टेन एंड एब्सटेन मेथड, जो श्रील प्रभुपाद ने हमको 16 माला 4 नियम बताए हैं, ये सब हमारे कॉर्पोरेट सेमिनार्स के टर्म्स आपको लग रहे होंगे। प्रभुपाद ने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से अपने पुस्तकों में ये सारे टर्म्स दे रखे हैं हमारे परिवर्तन के लिए। 16 माला, 4 नियम, सस्टेन एंड एब्स्टेन, कि किससे दूर रहना है और कौन सी चीजों को अपनाना, अनुकूल प्रतिकूल। उसके पश्चात सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो अब तक हम करते आ रहे थे हमारे जीवन में, कैसे अब उनको न छोड़ते हुए उनके बदले भगवान के लिए वो हम करें। इससे ज्यादा सरल मार्ग क्या हो सकता है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, यदि आप कोई कलाकार हो, गायक हो, कोई यदि कुक है, मैनेजर है, कोई भी पेशे के आप हो, आप उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए केंद्रित करो। फाइनली हमने रूथलेस डिटर्मिनेशन के ऊपर चर्चा की थी कि जब तक हमारे अंदर हम ऐसा दृढ़ विश्वास या ऐसी दृढ़ता न लाएं, कौन सी दृढ़ता, निर्दयी हमारे ऊपर, हम जब तक हमारे स्वयं के ऊपर निर्दयी नहीं होते तब तक भगवान की दया नहीं प्राप्त कर सकते। तो एक तरफ है भगवान श्री कृष्ण की दया और दूसरी तरफ है हम अपने ऊपर, हमारे ऊपर निर्दयता, उल्टा होता है। हम अपने ऊपर कितने जन्मों से इतने कृपालु बने हुए हैं, दयावान, खुद के ऊपर दयावान, खुद के ऊपर कॉम्प्रोमाइजिंग, खुद के ऊपर चैरिटेबल, खुद के ऊपर काइंड, पोलाइट। और जैसे ही हमारे खुद का दायरा खत्म हो जाता है वहां से हमारी निर्दयता शुरू होती है। हमारे कंफर्ट जोन के बाहर हम पूरी संसार को डिस्कंफर्ट में डालने के लिए राजी हो जाते हैं, पूरे सृष्टि को, इवन इफ इट टेक्स फॉर द एंटायर क्रिएशन टू बी इन डिस्कंफर्ट जस्ट सो दैट आई कैन बी कंफर्टेबल, बेटर बी इट। तो रूथलेस डिटर्मिनेशन, और इतने सारे उदाहरण श्रीमद् भागवत यदि हम खोलें तो ये ऐसे ऐसे उदाहरण सुखदेव गोस्वामी ने सुनाए हैं। परीक्षित महाराज स्वयं खुद एक उदाहरण है, सुखदेव गोस्वामी स्वयं खुद एक उदाहरण है, जितने वहां पर बैठे थे वो स्वयं, वो व्यक्तिगत रूप से उदाहरण, प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के, ध्रुव महाराज वो भी 5 वर्ष के, उनको तो ये नाम मिला हुआ है, ध्रुव का अर्थ है रूथलेस डिटर्मिनेशन। पांडव, हमारे गुरुवर्ग श्रील प्रभुपाद जी, कितने सारे ऐसे उदाहरण। तो मैं आज सुबह एक ऐसे उदाहरण के विषय में सोच रहा था। इस व्यक्ति से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूं, ये कोई हमारे परंपरा में नहीं है। वृंदावन में मैं जब था तो ये व्यक्ति बिहार के रहने वाले, अभी तो नहीं है, ये देहांत हो गया इनका, और बहुत रेलेवेंट है, गोवर्धन के ये अनन्य भक्त थे, गिरिराज गोवर्धन के, और इनके अंतिम दिनों में इन्होंने अपना शरीर छोड़ा गोवर्धन में, और वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन। आपको यदि पता है गुरु पूर्णिमा जिस दिन ब्रजमंडल के ही नहीं बल्कि आसपास के जितने शहर गांव सब लोग गुरु पूर्णिमा के दिन सनातन गोस्वामी तिरुभाव दिवस भी उस दिन रात के 12 बजे से परिक्रमा शुरू करते हैं, चलने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है गोवर्धन परिक्रमा, उस दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो इनके विषय में मैं उस टाइम तो सुना था, रूथलेस डिटर्मिनेशन जिसको कहते हैं, कि ये हर दिन गोवर्धन परिक्रमा करते थे, एवरी डे। इनका नाम बिहार के ये थे दशरथ मंझी। तो मैंने थोड़ा आज सुबह रिसर्च किया कि क्या इनका फोटो कहीं गूगल में है, तो एक कोई बरसाना की वेबसाइट में मुझे इनका फोटो और इन्होंने जो रूथलेस डिटर्मिनेशन दिखाया उसका एग्जाम्पल भी उस स्टोरी के साथ। तो ये व्यक्ति यहाँ पर इनका फोटो आप देख रहे हो, जिनके विषय में कहा गया है नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वन पर्सन। तो हालांकि इन्होंने अपने अंतिम दिवस ब्रज में गोवर्धन की सेवा करते हुए परिक्रमा करते हुए अपना शरीर त्यागा, तो इनकी कहानी ऐसी है कि 1960 में बिहार में जहां पर रहते थे गहलोर घाटी गया के पास, तो इनकी धर्म पत्नी का देहांत हुआ और कारण ये था कि जब वो उनको अटैक आया तो डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले उन्होंने दम तोड़ दिया और डॉक्टर जो मेडिकल सेंटर इनके गांव के निकट था वो केवल 1 किलोमीटर दूर था इनके गांव से, लेकिन वो मेडिकल सेंटर जो केवल 1 किलोमीटर दूर था इनके गांव से, उस 1 किलोमीटर में एक पर्वत था, इसलिए गांव वालों को उस मेडिकल सेंटर में जाने के लिए पूरे पर्वत पर घूम कर जाना पड़ता था जो कि 70 किलोमीटर हो जाता था। और ये बचपन से गोवर्धन पर्वत के अनन्य भक्त रहे थे। तो यहां पर आप जो देख रहे हो ये चित्र में, तो जब 1960 में इनकी पत्नी का देहांत हुआ, कारण क्या था कि 70 किलोमीटर घूमकर इनको जाना पड़ा, तब तक इनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया था, तो इन्होंने डिसाइड किया कि आगे ऐसा हादसा न हो, ऐसा मेरे गांव का कोई गांव वाला ऐसे न मरे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं ये पर्वत को चूर चूर करूंगा अकेले, अकेले मैं इस पर्वत के बीच से रास्ता निकालूंगा डायरेक्ट मेरे गांव से मेडिकल सेंटर तक। इनके पास कुछ बकरियां थी, छोटा सा एक प्लॉट था खेत का, सब बेच दिया उन्होंने, वो बेचकर इन्होंने औजार खरीदे, हथौड़ी वगैरह जो भी, सब लोग पूरा गांव इन पर हंसता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये व्यक्ति 22 साल नॉनस्टॉप इन्होंने वो जो चट्टान वो जो पर्वत था उस पर्वत में से रास्ता निकाला। हाउ मेनी इयर्स? 22 इयर्स नॉनस्टॉप। तो ये जो आप देख रहे हो ये रास्ता, ये फोटो उसी रास्ते का है। इन्होंने अकेले 22 साल नॉनस्टॉप कर ये रास्ता निकाला और आज ये रास्ता इस प्रकार से है। तो इनके गांव से वो मेडिकल सेंटर तक केवल एक किलोमीटर का ये रास्ता इन्होंने सिंगल हैंडेडली, जिसको बोलते हैं, निकाला है. दिस इज कॉल्ड रूथलेस डिटर्मिनेशन. तो ये उदाहरण इसलिए हम सुना रहे हैं कि हो सकता है ये भौतिक लगता हो हमें, अरे क्या है, मेडिकल सेंटर जाने के लिए 22 साल बर्बाद किया. हमको उससे सिद्धांत समझकर प्रेरणा ये लेनी है कि यदि कोई इतना रूथलेस डिटर्मिनेशन एक मेडिकल सेंटर तक पहुंचाने के लिए दिखा सकता है, तो श्री श्री राधा मदन गोपाल जी के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए 22 साल तो छोड़ो, 22 दिन तो छोड़ो, 22 घंटे तो छोड़ो, 2 घंटे तो रोज निकाल सकते हैं. 2 घंटे क्योंकि हमें यह समझना है, कई बार हमको ये इतना असंभव कार्य लगता है कि हो पाएगा कि नहीं, बहुत बड़ी चट्टान सामने है, इम्पॉसिबल टास्क काइंड ऑफ. कारण हम ही है इसका, कारण हम ही है, क्योंकि हम ही ने स्वयं, हम लोगों ने अपना जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, इतने जन्मों से इस भौतिक संसार में इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि जो 1 किलोमीटर का रास्ता, ये कॉम्प्लिकेशंस क्या है, वो पर्वत, इतना बड़ा पर्वत जो बीच में है. और अब जब हमें समझ में आया है कि इस पर्वत की एक एक ईंट या पत्थर, हमने ये पर्वत खड़ा किया है और हमने ही मेहनत कर इस पर्वत पर जो भी पत्थर हमने लगाए, चट्टाने हमने ही लगाई, और अब जब हमें उस ओर जाना है, तो हमको जब हथौड़ा हाथ में दिया जाता है, हथौड़ा क्या है, बीड बैग, जब हथौड़ा हाथ में दिया जाता है कि अब इसे पार करो, तो कई बार तो हम हथौड़ा छोड़ देते हैं और हम सोचते हैं कि अरे घूम के चले जाओ यार, या भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान तोड़ने की क्या जरूरत है, आप एक हेलीकॉप्टर भेज दो ना, इधर से ऊपर चले जाएंगे. इन कलयुगा वी ऑलवेज लुक फॉर चीप रेमेडियल मेजर्स. तो हमने भक्ति वैभव स्वामी महाराज का उदाहरण पिछली बार लिया था, आप लोगों को याद होगा, जिन्होंने एक एक वर्ड डिक्शनरी में जर्मनी टू इंग्लिश सीखकर प्रभुपाद की सारी पुस्तकें उन्होंने पढ़ी. और फिर हमने उदाहरण लिया था, ये महाराज अपने एक प्रवचन में हॉक का उदाहरण देते हैं और मछली का उदाहरण देते हैं. कृष्ण भक्ति इज नॉट फॉर शैलो स्विमर्स, इट्स फॉर डीप डाइवर्स. तो 3 लेसन्स इस प्रकार से महाराज श्री कह रहे थे. हॉक ऑफ माया ऑलवेज हैज हिज आईज ऑन द फिश लाइक साधका. Fishes who are complacent and inattentive become prey. To avoid the hawk, fishes have to swim deep waters. अर्थात हमें हमारी भक्ति में जितना हो सके उतना गहरा उतरना है. जितनी गहराई में हम उतरेंगे, उतने ज्यादा भक्ति के जो मोती हैं वो हमें प्राप्त होंगे. और जितना हम केवल ऊपरी सतह पर तैरते रहेंगे, उतना जो चील है उसका शिकार बनते रहेंगे. तो अब हम आज का श्लोक लेते हैं. भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण, श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 25 श्लोक क्रमांक 17। नहि सद्भाव युक्तानां सुराणां ईश विस्मय मत्तो सतां मानभंगः प्रशमायोपकल्पते। नहि सद्भाव युक्तानां सुराणामीश विस्मयः मत्तो सतां मानभंगः प्रशमायोपकल्पते। नहि सद्भाव युक्तानां सुराणामीश विस्मयः मत्तो सतां मानभंगः प्रशमायोपकल्पते। न नहीं ही निश्चय ही सद्भाव सत्वगुण से युक्तानाम युक्त सुराणाम देवताओं के ईश नियंता विस्मय झूठी पहचान मत्तः मुझसे असताम अशुद्ध मान मिथ्या अभिमान का भंग समूल विनाश प्रशमाय उन्हें राहत दिलाने के लिए उपकल्पते इच्छा है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। क्योंकि देवता सत्वगुण से युक्त होते हैं अतः अपने को स्वामी मानने का मिथ्या अभिमान उनमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जब मैं सत्वगुण से विहीन उनके मिथ्या अभिमान को भंग करता हूं तो मेरा उद्देश्य केवल उन्हें राहत दिलाना होता है। तात्पर्य, देवताओं को सद्भाव युक्त माना जाता है क्योंकि वे भगवान द्वारा नियुक्त सेवक होते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवेर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान को समुचित रीति से दी गई भेंट आध्यात्मिक बन जाती है। देवतागण ब्रह्मांड के प्रशासन में विविध विभागों का कार्यभार संभालकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। अतएव देवताओं या भगवान के सेवकों के रूप में उनका अस्तित्व शुद्ध होता है, सद्भाव। जब देवतागण भगवान द्वारा प्रदत्त उच्च पद के अनुरूप नहीं रह पाते और अपने समुचित व्यवहार से विपत होते हैं, तो वे देवताओं के रूप में कार्य न करके बद्ध जीवों के जैसा कार्य करते हैं। मान अर्थात मिथ्या प्रतिष्ठा निश्चय ही बद्ध आत्मा के लिए चिंता के युक्त भार जैसी होती है। मिथ्या अहंकारी व्यक्ति कभी शांत या संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि वह अपने विषय में मिथ्या तथा अतियोक्षति पूर्ण बोध रखता है। जब भगवान का सेवक असत अर्थात अधर्मी बन जाता है, तो भगवान उसके मिथ्या गर्व को चूर करके उसे अधर्म से बचाते हैं, जिसके कारण वह अपराधी या पापी नहीं बन पाता। भगवान ने स्वयं कहा है, यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनं शनैः। मैं मनुष्य का तथा कथित ऐश्वर्य हर कर उसे आशीर्वाद देता हूं। जैसा कि रूप गोस्वामी ने बतलाया है, भगवत भक्ति के उन्नत अवस्था युक्त वैराग्य है, जिसमें इस संसार के ऐश्वर्य का सदुपयोग भगवान के मिशन को पूरा करना होता है। स्पष्ट है कि इस संसार की सारी वस्तुएं भगवान की महिमा का प्रसार करने और सत्समाज की सृष्टि करने में बड़े आश्चर्यजनक ढंग से प्रयुक्त की जा सकती है। अत्यधिक उन्नत भक्त कभी भी भौतिक साज सामान से ठगा नहीं जाता, अपितु वह इसका सदुपयोग भगवान के आनंद हेतु अपना कर्तव्य मानकर ईमानदारी से करता है। यहां पर इंद्र यह भूल गया कि वह ईश्वर का विनीत सेवक है, इसलिए कृष्ण ने इस मोहग्रस्त देवता को पाठ पढ़ाना चाहा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये श्लोक है। यहां स्वयं भगवान देवताओं के विषय में कह रहे हैं, सद्भाव युक्तानाम, कि जो सत्वगुण में स्थित है देवतागण, उनके अंदर अभिमान लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए। और तात्पर्य में लिखा गया है कि देवताओं को सत्वगुण में स्थित रहकर अभिमान शून्य रहना है, नहीं तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि यदि वो नहीं हो पा रहा तो मान भंग, उनका अभिमान उसको चूर चूर मैं स्वयं करता हूं, वो प्रोजेक्ट भगवान स्वयं लेते हैं, अभिमान भंग करने का प्रोजेक्ट। तो यहां पर हमने पढ़ा, जब देवतागण भगवान द्वारा प्रदत्त उच्च पद के अनुरूप नहीं रह पाते और अपने समुचित व्यवहार से विपत हो जाते हैं, तो वे देवताओं के रूप में कार्य न करके बद्ध जीवों जैसा कार्य करते हैं। दे बिकम लाइक ऑर्डिनरी कंडीशन्ड सोल्स। तो यहां पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भगवान उनके ऊपर डाल रहे हैं जो सत्वगुण में स्थित होना चाह रहे हैं। तो हम लोग यहां पर साधना भक्ति में जो लगे हुए हैं और अपने अंदर हम सत्वगुण के द्वारा परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, सबसे पहला यही उद्देश्य है हमारा कि हम कलयुग में जहां पर हर एक कोने में रजोगुण और तमोगुण फैला हुआ है, वहां से अपने आप को निकालकर श्रील प्रभुपाद एक दफे कहे, नॉट ओनली कलयुग इज फुल ऑफ रजोगुण एंड तमोगुण, बट वी बिकॉज ऑफ अवर लाइफ स्टाइल वी कीप एडिंग मोर रजोगुण एंड तमोगुण इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजोगुण एंड तमोगुण. जैसे रामायण में वर्णन है कि देवताओं ने जब ये निश्चय किया कि रामचंद्र जी का अभिषेक रोकना है, क्योंकि उनको वनवास जाकर रावण, ये जितने सारे और असुर हैं, कहरदूषण, इन सब का वध करना है. अभी राज्याभिषेक हो जाएगा तो यहां पर तो हैप्पी एंडिंग हो गया. तो हमारा एंडिंग वो हैप्पी नहीं रहेगा फिर. तो इसलिए वो लोग नियुक्त करते हैं सरस्वती को. माता सरस्वती को नियुक्त करते हैं कि आप जाओ अयोध्या में और एक कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो रंग में भंग डाले. तो सरस्वती ने सोचा कि मैं ही मिली आपको ऐसा थैंकलेस टास्क करने के लिए. तो सरस्वती जब अयोध्या जाती है तो वो ढूंढती है ऐसे व्यक्ति को जो पहले से कूड़ा करकट के जैसी है, और वो मंथरा. तो रामायण में उदाहरण दिया गया है कि जब आपको कूड़ा करकट डालना है तो आप साफ जगह पर नहीं डालते उसको, है ना. इसलिए आप देखो, भारत में एक व्यक्ति यदि कहीं पे कचरा इकट्ठा करना शुरू करता है तो पूरी कॉलोनी उधर ही शुरू करती है डालना. तो प्रभुपाद ने जब कहा कि पहले से कलयुग है क्या, कूड़ादान, कूड़ा करकट, घंटा गाड़ी जो है वही कलयुग, और इसके ऊपर जैसे ये कलयुग, अब इसको प्रोग्रेस बोलेंगे या डिग्रेस बोलेंगे, जो भी आप कहो, एज कलयुग इज प्रोग्रेसिंग इन इट्स रजोगुण इन तमोगुण, इट इज एक्यूमुलेटिंग मोर रजोगुण एंड तमोगुण बिकॉज ऑफ द पीपल लिविंग इन कलयुग, और उसकी बढ़ोतरी करते मेरी तरफ से थोड़ा और रजोगुण तमोगुण मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा हूं, लो चैरिटी मेरा. तो वहां से अपने आप को निकालना बहुत बड़ी मेहनत हमें करनी है, वहां से अपने आप को निकालने के लिए. और इसलिए हां, जैसे कि उदाहरण कई बार दिया जाता है कि भगवान के अवतार क्रेन के जैसे होते हैं, क्रेन होता ना, क्रेन जाकर उठा लेते हैं. अब प्रश्न ये है कि क्या भगवान, उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है हमको इस कलयुग से उबारने की, या हमारे ऊपर भी ये जिम्मा है. तो ये दो एक्सट्रीम, दो स्कूल्स हैं, टू स्कूल्स ऑफ थॉट. एक कहता है पूरा जिम्मा हमारे ऊपर, दूसरा कहता है हम कुछ नहीं करेंगे, क्रेन को आने दो. तो हमने आज हमारा डिस्कशन इसके ऊपर लिया है. ध्यान से पढ़िए, इस्कॉन इज सक्सेसफुल doesn't necessarily mean I am also successful. हमने अक्सर ये कोट पहले भी सुना होगा, थोड़ा इसके ऊपर हमने और एडिशंस किए हैं. पहले आपको वो एडिशंस दिखा दें, पढ़ लें हम लोग, फिर डिस्कशन प्रारंभ करेंगे. आफ्टर दिस माई गुरु इज अ प्योर डिवोटी डजंट नेसेसरली मीन आई एम ऑल्सो प्योर डिवोटी. हरिनाम इज अ टॉप मोस्ट प्रोसेस डजंट नेसेसरली मीन आई एम ऑल्सो नमाचार्य. I have the ticket to Golok Vrindavan doesn't necessarily mean I have reached to Golok Vrindavan. जैसे राधा गोपीनाथ प्रभु कह रहे थे कि कितनी सहजता से कई बार हम लोग बोल देते हैं कि हम लोग तो मतलब इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि गोलोक वृंदावन तो बस कुछ ही, जैसे बस अभी अपने पार्किंग लॉट में वैकुंठ विमान आने ही वाला है. हो गया अभी. राधा गोपीनाथ रू कह रहे थे ना, काम क्रोध लोभ बो मत्सर थोड़ा सा अहंकार बस लेश मात्र का बाकी है. आई एम वर्किंग ऑन इट. हो जाएगा, कुछ एक महीने का प्रोजेक्ट है, हो जाएगा. और इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि गोलोक वृंदावन ये जो धाम है ये इतना रेयर, इसका डिस्क्रिप्शन शास्त्रों में दिया गया है कि ऑर्डिनरली आपको कहीं पे शास्त्रों में गोलोक वृंदावन का उल्लेख नहीं मिलेगा. बहुत कॉन्फिडेंशियल तरीके से गोलोक वृंदावन का वर्णन किया गया है हमारे स्क्रिप्चर्स में. और हम लोग गोलोक वृंदावन की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे यहां से इगतपुरी जा रहे हैं. एक बार डिसाइपल्स प्रभुपाद से पूछे, प्रभुपाद इट इज मेंशन्ड दैट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज त्रिपाद विभूति, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज जस्ट एकपाद विभूति, वन फोर्थ ऑफ द एंटायर क्रिएशन एंड दिस वन फोर्थ इज सो बिग, सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड मस्ट बी सो ह्यूज, गोलोक वृंदावन मस्ट बी सो बिग एरिया वाइज. So when we will reach Golok Vrindavan in few years, how will we find you? Because it is mentioned there are millions of gopis and manjaris and sakhas and brajabasis. Where will we find you? So Prabhupada muskura rahe the, sabse pehle dekh rahe the. As if you are going. प्रभुपाद ने कहा, डोंट वरी आई विल फाइंड यू. और कई डिवोटीज थोड़े विनोद में कह देते हैं कि गोलोक वृंदावन में यदि आपने देखा कि पहले से प्रसादम काउंटर शुरू होने से पहले से लाइन लग गई है तो समझ लेना ये लोग इस्कॉन से आए हैं. ये जो नया लॉट गोलोक वृंदावन में एंट्री किया है ये डेफिनेटली इस्कॉन का है, क्योंकि ये प्रथा ये हमारा ही हॉलमार्क है. तो हम लोग कई बार हमारे डिस्कशन ऐसे होते हैं कि बस अब हरिनाम दीक्षा हो गई, अब ब्राह्मण दीक्षा हो गई, अब तो बस गार्लैंड डालकर गोलोक वृंदावन में एंट्री, तीन बार हरि बोल बोलकर भगवान ही वेलकम करने वाले हैं. परंतु जब हम सोलह माला करने बैठते हैं, माला हाथ में लेते हैं, और जब श्रवण कीर्तन की विधि में हमको ये कहा जाता है कि ऑफेंसलेस चैंटिंग, अटेंटिव हियरिंग, तो वो ऑफेंसलेस और वो अटेंटिव जब हम अपने गिरेबान में झांक कर देखते हैं तब समझ में आता है कि कितने बड़े बड़े राक्षस अभी तक पनप रहे हैं अंदर और हम खिला पिला रहे हैं उनको। तो निरुत्साहित नहीं होना है। ये सारे कोर्स जो आपको हम दिखाएं निरुत्साहित करने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है। हम अब ये सारे कोर्स के पीछे एक एक एग्जाम्पल लेंगे, शास्त्र में एग्जाम्पल्स लेंगे कि जिन्होंने उनके सौभाग्य को सहजता से लिया और सबसे बड़े सौभाग्यशाली होने के बजाय वो सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली हुए। तो हम यदि अपने सौभाग्य पर गौर करें, जो प्रभुपाद के आंदोलन में हमें ये अवसर प्रदान किया गया है भगवत धाम जाने का, शुद्ध भक्त बनने का, गोलोक वृंदावन में भगवान के सेवक बनने का। प्रभुपाद एक बार कहे, डू यू नो व्हाट इज द गोल ऑफ दिस इस्कॉन मूवमेंट? टू एंजॉय अ नाइस पिकनिक ऑन द बैंक्स ऑफ जमुना विथ कवहर्ड कृष्णा, दैट इज द गोल। तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जय प्रभुपाद, नाइस पिकनिक ऑन द बैंक्स ऑफ जमुना विथ कृष्णा, वाह 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 वाह, क्या बात है, मैं भी अपना टिफिन लाऊंगा, नासिक से उसल लेके जाऊंगा। वहां तक पहुंचना तो यहां पर हम अपने सौभाग्य पर यदि गौर करें कि हम में से यहां पर कितनों ने इस्कॉन में आने से पहले हम उठे, सुबह सुबह एक दिन उठे और उठते ही हम ढूंढने लगे कोथाय कृष्ण, हे राधे, हे ब्रज देवी के, कहां पर हैं? मैं आपको जो छोड़ के यहां पर इस भौतिक संसार में त्रस्त हूं, मैं आपको प्राप्त करना। कितने ऐसे भगवान को खोजते हुए हम घर से निकले हैं, कोई? उल्टा भगवान ने प्रभुपाद जैसे प्रतिनिधियों को भेजा, जाकर ढूंढो, सो रहे उठाओ उनको। तो प्रभुपाद विचरण कर रहे थे, हम जैसे दुर्भाग्यशाली बद्ध जीवों को ढूंढते हुए उठा उठा कर कहे, जीव जागो ये हरिनाम लो। और इतना सब कुछ, कल हम इसकी चर्चा कर रहे थे हमारे जागृति कार्यक्रम में कि हम लोग इस्कॉन में जो आकर माला शुरू किए हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, दीक्षा भी हो गई है कई भक्तों की, तो ये सब जो हमने इतना विश्वास, प्रभुपाद ने इतना एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया, तब जाकर हमको विश्वास आया कि हाँ कुछ शायद दम है इसमें। तो हम ये चर्चा कर रहे थे, मान लो कि कोई प्रचारक अकेला रास्ते में हम चल रहे हैं और हमको आके कहता, ये लो हरिनाम, गोलोक वृंदावन का टिकट है, कौन हो भाई तुम, कहां से आए हो, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? बिल्कुल विश्वास नहीं होता। बीच रास्ते में कोई ऐसे ही अनजान व्यक्ति हमको कह रहा है, क्या हम चार नियम पालन करना शुरू कर देते उसके कहने पर? यहां पर आए, देखा इतना बड़ा मंदिर, इतने सारे लोग बैठकर सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं और सब लोग अपने आध्यात्मिक प्रगति के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तब धीरे 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 जाकर हमको थोड़ा विश्वास होने लगा कि मैं भी यदि करूंगा तो शायद मेरा भी उद्धार हो सकता है। तो देखिए, हमारा सौभाग्य कि हम इस्कॉन में आए, किस तरीके से, जैसे कि कोई व्यक्ति भाग रहा है, भाग रहा है रेलवे स्टेशन की ओर भाग रहा है, उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए, उसके घर पहुंचने के लिए यदि हम कहें, उसे पता नहीं है कि कौन सी ट्रेन उसको उसके घर पहुंचाएगी, लेकिन उसे पता है कि ये स्टेशन से कोई तो एक ट्रेन मुझे मेरे घर तक पहुंचा देगी। तो हम लोग भागते गए इस रेलवे स्टेशन, और इस रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद हमने देखा कि 100 से भी अधिक प्लेटफॉर्म है जहां पर ट्रेन खड़ी है, और सारे प्लेटफॉर्म्स पर अनाउंसमेंट हो गया है कि ट्रेन अब छूटने वाली है, और आपके पास टिकट भी नहीं है, आप जानते भी नहीं कि कौन से प्लेटफॉर्म पर कौन सी ट्रेन मुझे मेरे घर तक पहुंचाएगी। तो अचानक हम वहां पर पहुंचे और कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़े होकर कहा, ये तुम्हारी टिकट, इस ट्रेन में बैठ जाओ। हम बैठ गए, टिकट लेकर बैठ गए, ट्रेन चालू हो गई। उसके बाद में समझ में आया कि मैं तो सही ट्रेन में बैठ गया। ये है हमारा हाल इस्कॉन में, ऐसे आए हैं हम। थोड़ा अंदाजा आ रहा है अभी। अब टिकट तो है, ट्रेन में भी बैठे हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि इतनी सहजता से जब ट्रेन मिल गई, टिकट मिल गई, तब हम खिड़की से बाहर ताकते रहते हैं, अरे वो ट्रेन ज्यादा अच्छी दिख रही है, वो ट्रेन थोड़ी ज्यादा फास्ट जा रही है। और फिर भगवान हमें सहजता से भक्ति में ले आते हैं, फिर भगवान ट्रेन को बीच बीच में रुकाते हैं, ऐसे स्टेशन पर रुकाते हैं, गतपुरी, और वहां फिर बड़े वालों को भेजते हैं। तो कई पैसेंजर होते हैं, वो लोग भगवान देखते हैं कि वो लोग थोड़ा दृढ़ निश्चित हैं, उतर नहीं रहे प्लेटफॉर्म पर जाकर वड़े खाने के लिए, तो उनको और थोड़ा टेस्ट करने के लिए वड़े वालों को अंदर भेजते हैं। तो हां, ये सारे बीच में टेस्ट प्रलोभन आते हैं, और कई बार हम देखते हैं कई भक्त ट्रेन में बैठ जाते हैं और एकदम उत्साह से कि बस अब तो मैं ही पहुंचाऊंगा इस ट्रेन को और सारे पैसेंजर्स को गंतव्य स्थान तक, और फिर हम देखते हैं कि एक दो स्टेशन गए वो भी गए, स्टेशन भी गया वो भी गए, जाने कहां गए वो लोग। फिर बस इस्कॉन के इतिहास की किताबों में कि एक ऐसे भगत थे, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ एंथुजियास्टिक भगत। तो ये नहीं कि हमको ट्रेन के अंदर भागते फिरना है, उसे कुछ नहीं होने वाला, ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही है। इस्कॉन इज गोइंग एट इट्स स्पीड विच इज सपोज टू बी गोइंग, विच इट्स बीन प्रोफेसाइज्ड फॉर। वी हैव टू कोऑपरेट विद द स्पीड ऑफ द ट्रेन बाय जस्ट सिटिंग consistently, not monkeying around. सुना आपने, don't monkey around. तो ऐसा क्यों होता है कि जब ये प्रोसेस, ये प्रणाली, ये जीवन शैली इतनी परफेक्ट प्रभुपाद ने दी है हमें, सब कुछ परफेक्ट है, फिर भी हम क्यों वो प्रगति का अनुभव नहीं कर पाते? उल्टा कई बार प्रगति तो छोड़ दो, हम उस पाथ से विपथ, यहां पर जो कहा गया विपथ हो जाते हैं, जैसे कि देवतागण। तो हम एक एक उदाहरण लेंगे हमारे शास्त्रों से। सबसे पहला उदाहरण है यादवों का। अब ये ऐसे जिनके वंश में भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी, तो इनके विषय में बताया गया है श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में कि इनके अंदर एक समय भगवान ने अपनी सारी लीलाएं अब कर दी, द्वारकाधीश भगवान, और ये लोग अब भगवान के ऐसे ऐश्वर्य को अपनी धरोहर मानते हुए या ये मानते हुए कि हमारे वजह से ये इतने ऐश्वर्यशाली हुए हैं, तो इनके अंदर ऐसा अभिमान आ गया इन यादवों के अंदर कि वो भगवान को सहजता से लेने लगे, क्योंकि सहजता से भगवान ने इनके खानदान में अपनी पैदाइश कराई। तो 11वें स्कंद में मौशल लीला का वर्णन है, और ये जो आप चित्र देख रहे हो ये मौशल लीला का चित्र है, जहां पर स्वयं कृष्ण और बलराम ने पूरे यदुवंश का विध्वंस किया, खत्म किया, क्योंकि वो भगवान के उस नाम का दुरुपयोग कर रहे थे। भगवान ये दिखा रहे हैं, इवन इफ दैट पर्सन इज माय ओन फैमिली मेंबर, ये यादव कौन थे? भगवान के खानदान के लोग, परिवार वाले। इवन इफ इज माय फैमिली मेंबर बट इफ इज मिसयूजिंग, मिसरिप्रेजेंटिंग मी, आई विल डिस्ट्रॉय। तो किस्सा यह हुआ कि नारद मुनि और विश्वामित्र मुनि वो द्वारका के निकट पिंडारक नामक स्थान पर पहुंचे, और ये यदु, नारद मुनि और विश्वामित्र मुनि, इनका मजाक उड़ाने के लिए इनको ये लगने लगा कि बस अबे अभी हमें इतना लाइसेंस मिल गया है कि हम किसका भी मजाक उड़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम यादव हैं और हमारे भगवान श्री कृष्ण हमारे कुल में जन्मे। तो सांभ को उन्होंने एक गर्भवती स्त्री के रूप में, उसको कपड़े पहनाकर, तकिए वकिए लगाकर, एक गर्भवती स्त्री जैसा बनाकर इनके सामने लेकर गए और पूछे, बताओ कि लड़का होगा या लड़की होगी, बिना सोनोग्राफी के बताओ। तो समझ गए कि ये कल के छोकरे, नारद मुनि और विश्वामित्र मुनि क्या समझे, ये कल के छोकरे, ये हमारी खिल्ली उड़ाने के लिए सब कर रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया कि इसके गर्भ से एक लोहे का टुकड़ा पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे यदुकुल का नाश करेगा, जाओ देख लो, तुम पूछ रहे हो ना, यही अभी पैदा होने वाला। अब ये डर गए, जाकर देखा तो सच में जो सांभ पुरुष को उन्होंने स्त्री बना दिया था, तकिए लगाकर गर्भवती दिखा रहे थे, सच में लोहे का टुकड़ा निकला वो तकिए के बदले। अब वो उग्रसेन महाराज के पास गए, उग्रसेन महाराज ने कहा इतना बड़ा अपराध तुमने कर दिया, अब उसको चूर चूर करो और उसको समुद्र में फेंक दो। तो लोहे के टुकड़े को चूर चूर कर समुद्र में फेंक दिया, एक मछली ने उसमें से कुछ खा लिया और लहरों से फिर वो जो उसका जो चूरा था वो वापस से तट पर आया, और वहां पर ये जो आप देख रहे हैं ये सब लोहे की सलाखें उगने लगी, और ये हुई मौशल लीला, जब ये लोहे की सलाखों को ले लेकर यादवों ने अपने एक दूसरे को खत्म किया। तो यादवों को जो भगवान ने अवसर दिया था कि मैं तुम्हारे नाम से कहलाया जाऊंगा यदुवंशी, अभिमानवश उन्होंने उसको गंवा दिया। तो एक एक उदाहरण हम ये ले रहे हैं कि कैसे व्यक्तियों ने अपने सौभाग्य को गंवा दिया। तो पहला उदाहरण यादवों का है, अगला उदाहरण नलकुवर मणिग्रीव। तो यादवों ने अभिमान के वजह से अपने सौभाग्य को गंवा दिया, नलकुवर मणिग्रीव ने नशे में धुत होने के वजह से क्या सौभाग्य। नलकुवर मणिग्रीव वो नारद मुनि का संग तो उनको मिला ही, परंतु दशम स्कंध में दामोदर लीला में वर्णन है कि नलकुवर और मणिग्रीव वो शिव अनुचर थे, सबसे बड़े वैष्णव महादेव शिवजी उनके अनुचर थे ये, हालांकि कुबेर के पुत्र, परंतु शिव अनुचर होने के वजह से शिवजी ने इनको अनुमति दी थी कि कैलाश धाम में तुम नियमित रूप से मेरे साथ रह सकते हो परमानेंटली। तो कैलाश धाम में निवास करना बहुत बड़ा सौभाग्य, न केवल निवास करना कैलाश स्थान में कैलाश धाम में, बल्कि शिवजी के निजी अनुचर बनकर रहना, पर्सनल एसोसिएट्स, एक और बड़ा सौभाग्य। उसके ऊपर ये जिस दिन ये किस्सा हुआ मंदाकिनी गंगा में, यहां की जो गंगा है और वो जो वहां की कैलाश धाम की जो गंगा है जहां से वो निकलती है उनके जटाओं से, शिवजी के जटाओं से, वो है मंदाकिनी गंगा, जो यहां पर नीचे उन्होंने उसका फ्लो रेगुलेट कर फिर नीचे उसको भेजते हैं। तो वो ओरिजिनल गंगा में ये स्नान कर रहे हैं, और स्नान करते करते ऐसा अपराध, जय श्री राधा मदन गोपाल जी की, नग्न अवस्था में और नशे में धुत, एक तो नशे में धुत नग्न अवस्था में और ऐसी स्त्रियों के साथ। और ये बताया गया है कि कैलाश धाम वो ऐसा धाम है जहां पर बड़े बड़े विरक्त वैरागी शिवजी के ध्यान उपासना में लगे रहते हैं। ऐसे स्थान पर जाकर इन्होंने ऐसा गर्हित कार्य किया। ठीक है, इतना बड़ा अपराध करने के बावजूद नारद मुनि का संग इनको मिल रहा है और नारद मुनि के संग को इन्होंने एक कंटक माना। तो कैसे नलकुवर और मणिग्रीव ने अपने सौभाग्य को गंवाया नशे में धुत होने के वजह से। और वो नशा केवल उस मदिरा का नशा नहीं था, बदांत, उनको वो नशा था कि हम कुबेर के पुत्र हैं, शिव अनुचर हैं, कैलाश धाम में निवास कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो कई बार होता क्या है, हमारे अंदर भी इस प्रकार का नशा चढ़ जाता है। मैं दीक्षित हूं, ब्राह्मण दीक्षित हूं, न केवल ब्राह्मण दीक्षित हूं, मैं रेकमेंड भी करता हूं आजकल दूसरों को दीक्षा के लिए, इतने सालों से इस्कॉन का मेंबर हूं, ये हूं, वो हूं, तो वो नशा वो सर चढ़ने लगता है। सुना आपने, जो वो सर चढ़ने लगता है तो फिर सर के अंदर जो बुद्धि है वो नीचे उतरने लगती है। तो ये जो अभिमान सर चढ़ता है उसी रफ्तार से बुद्धि घुटनों के नीचे उतरती है। और फिर हम सोचते हैं कि मेरा अधिकार है कहने का, जो कुछ मैं कहूं, मैं जो कुछ चाहूं वो कह सकता हूं, जो कुछ मैं चाहूं मैं कर सकता हूं। और फिर नारद मुनि जैसे कोई आकर हमको सही सलाह देने आते हैं तो हमको वो कंटक लगते हैं। हमारी पार्टी में तुम बीच में कंटक बनकर क्यों आ रहे हो? तब जाकर फिर उनको कई बार श्राप देना पड़ता है, तब होश ठिकाने आते हैं हमारे। तो ये लोग कोई दामोदर लीला एंजॉय नहीं कर रहे थे नलकोर मणिग्रीव। हम लोग तो एकदम इतना कार्तिक के पूरा महीना इतने सुंदर तरीके से सुबह शाम दामोदर अष्टकम गाकर दीप ऑफर करते हैं। हम तो दीप ऑफर करते हैं ये जल रहे थे खुद खड़े खड़े वहां 100 साल। इसलिए कई बार हमको बहुत सावधानी से अपने आप को पेश करना चाहिए कि यदि हमें कोई पद दिया गया है, चाहे वो दीक्षा का पद हो, चाहे वो संस्था में कोई पद हो, चाहे कोई प्रचारक का पद हो, या हम केवल यदि भगवान और अपने गुरु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम कैसे उनको सही तरीके से प्रस्तुत करें जन साधारण के सामने। और नलकुंवर उदाहरण है कि इतना सब सौभाग्य हाथ में लेते हुए उन्होंने गंवा दिया। आगे चलकर भगवान की कृपा मिली हो तो नारद मुनि आ गए, तो नारद मुनि ने सोचा कि ठीक है, इन्होंने शिवजी का अपमान किया, मंदाकिनी गंगा का अपमान किया, मेरा अपमान किया, परंतु फिर भी मैं भगवान श्री दामोदर की कृपा दिलाकर रहूंगा। तो यह दूसरा उदाहरण, परम सौभाग्यशाली बन सकते थे ये, वहां से ये दुर्भाग्यशाली बन गए। इसके पश्चात मथुरा का वो धोबी, उसका दुर्भाग्य, अपने दुर्भाग्य की वजह से, हम हाल ही में सुन रहे थे इनके विषय में, इसने 1 करोड़ वर्ष तपस्या की भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए, 1 करोड़ वर्ष। तो भगवान ने सोचा कि इतना इतनी तपस्या की है मुझे मेरा सानिध्य प्राप्त करने के लिए, तो ठीक है मैं जाकर अपना संग देता हूं। तो यहां पर आप देखो कृष्ण और बलराम जाते हैं ये धोबी के पास मथुरा में, और जाकर न केवल संग देते हैं बल्कि सेवा का अवसर दे रहे हैं इसको, बोलते हैं कि थोड़े वस्त्र दो। और वो वस्त्र भी क्यों मांग रहे हैं धोबी से, हमारे आचार्य कहते हैं क्योंकि कृष्ण बलराम सोच रहे थे कि मथुरा एक शहर है, हम तो गांव से आए हैं, गांव वाले, और हमारी जो वेशभूषा है ग्वाले की वेशभूषा है, तो यहां पर हमारे जो मामा जी हैं उनका इमेज खराब हो जाएगा कि अरे कंस, कंस जैसा राजा और उसके भांजे ऐसे चिथड़े पहन के आए हैं। तो इसलिए वो जा रहे थे कि थोड़ा आपके जो स्वामी है कंस उनका इमेज हम बनाए रखें, इसलिए उस लेवल के मैचिंग कपड़े दो। नम्रता देखिए कृष्ण बलराम की, जो पूरी सृष्टि के स्रोत हैं वो धोबी से कपड़े मांग रहे हैं, वो भी कंस के उत्तरन, बोलते उत्तरन बोलते हैं ना, कंस की उत्तरन। और वो कंस तो बड़ा सारा था, वो फिट भी नहीं होते थे उसके कपड़े, फिर भी नॉन फिटिंग वो भी पहन लेंगे। तो ये धोबी का दुर्भाग्य देखो कि इतना संग मिल रहा है, इतने 1 करोड़ उसने तपस्या की साल, उसके बाद इसके लिए तो की थी कि इनका सानिध्य मिलेगा, और भगवान न केवल संग दे रहे सेवा का अवसर दे रहे हैं, और ये कहता है कि भागो यहां से, शर्म नहीं आती, कंस के कपड़े मांग रहे हो। इसे कहते हैं अनफॉर्चुनेट, अपने हाथ में आई हुई ये स्वर्ण संधि गंवा दी इस धोबी ने। तो वो कहावत है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, यहां पर तो धोबी भी घर का ना घाट का रहा। अगला उदाहरण कर्ण का। युद्ध से पहले भगवान स्वयं कर्ण से मिले और कर्ण को उसका असली परिचय दिया कि तुम हो कौन, तुम सबसे ज्येष्ठ पांडव हो, तुम युधिष्ठिर के भी ज्येष्ठ भ्राता हो। और भगवान कर्ण को कहे कि ये पांच पांडव तुम्हारी सेवा करेंगे। भगवान ने आश्वासन दिया कि कर्ण, जिसको तुम अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मान रहे हो अर्जुन, वो अर्जुन मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो तुम्हारी सेवा में लगा रहेगा। अब देखो, भगवान स्वयं कर्ण को एकांत स्थान में जाकर ये प्रस्ताव रखे, उसका परिचय बताया और कर्ण कहता है मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। इसको कहते हैं अनफॉर्चुनेट। क्या बोल रहा था वो? मेरी निष्ठा, दुर्योधन ने जो मुझे अंग का राजा बनाया और उस समय उसने मेरी मदद की जब कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। तो कर्ण अपना लॉजिक लगा रहा था, अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रहा था भगवान के सामने कि जब कोई, ये सारे पांडव, आप कहते हैं कुंती मेरी माता है, वो मुझे छोड़ दी, तब पूरे सृष्टि में केवल एक व्यक्ति मेरी मदद के लिए सामने आया और वो दुर्योधन। तो मैं कैसे मेरी वफादारी नहीं निभाऊं? तो भगवान ने कहा कर्ण, तुम जानते हो दुर्योधन ने तुमको उस समय अंग का राजा क्यों बनाया? क्योंकि दुर्योधन ढूंढ रहा था, उसने जब पांडवों का जो कौशल देखा, युद्ध कौशल देखा, तो दुर्योधन कांपने लगा डर के मारे कि एक ही गुरुकुल में हम सब पढ़े, मैं तो फेल हुआ, ये लोग तो अव्वल दर्जे से पास हो रहे हैं। तो उसे कोई ऐसा व्यक्ति वो चाहता था जो कि अर्जुन को परास्त करे। तो ये मत समझो कि उसने तुम्हारे ऊपर कृपा की है, उसने तुम्हें इस्तेमाल किया है। और दुर्योधन वो बना ही उसी पदार्थों से था, उसका रॉ मटेरियल ही वो था। स्वार्थी, अपने लिए किसी को भी किसी भी तरीके से किसी भी समय किसी भी मात्रा में इस्तेमाल करते रहो, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे कर्ण हो, चाहे साक्षात भगवान कृष्ण, वहां पर भी जाकर उसने तलवे चाट लिए कि मुझे नारायणी सेना दे दो आपकी। ये था दुर्योधन। तो भगवान कर्ण को कह रहे हैं कि तू ये समझता है कि वो तेरा दोस्त है? हम लोग उदाहरण दे रहे थे, वो तेरे को कड़ी पत्ते की तरह इस्तेमाल कर फेंक देगा बाहर। होता है ना, पोहा के अंदर कड़ी पत्ता डालते हैं ना, बेचारे कड़ी पत्ते को लगता है कि मेरे को सबसे पहले तड़के में डाला गया, पोहा से भी पहले पहले डालते हैं उसको। उसको ये नहीं पता कि जब वो खाने वाला व्यक्ति आएगा तो सबसे पहले तेरे को बाहर निकालेगा उसमें से, और बाहर निकालकर वहीं साइड में रखेगा और तू देखता रहे, प्लेट के साइड से देखता रहे कैसे तेरे को निकाल निकाल के वो पोहे का आस्वादन करेगा, जलेगा तू, जलता रहे फिर। तो भगवान कहे, कड़ी पत्ता का उदाहरण तो नहीं दिया उन्होंने, भगवान ने कहा कर्ण तू जो झूठी निष्ठा रखा है इस दुर्योधन के ऊपर, ये अव्वल दर्जे का निकम्मा इंसान है ये दुर्योधन। तो भगवान कर्ण के सामने अगर हम कहें कि शुद्ध, भगवान एक ऐसा अवसर दे रहे थे जैसे किसी के सामने आप स्वीट राइस दो, तो स्वीट राइस वो भी भगवान को ऑफर की गई जिसके अंदर बादाम, केसर ये सब कुछ मिलाया हुआ, कपूर, ऐसी स्वीट राइस को ठुकरा कर यदि कोई सड़ी हुई शराब पिए तो क्या कहोगे? वही कर्ण ने किया कि भगवान द्वारा ऑफर्ड फ्रेश सक्युलेंट स्वीट राइस ही डिसरिगार्डेड एंड वांटेड दिस स्टेल लिकर ऑफ दुर्योधन एसोसिएशन। तो ये नहीं समझना चाहिए कि कितना कितना वफादार था कर्ण। लोग किताबें भी लिखे हैं इसके ऊपर कि कर्ण की वफादारी देखो, इतना बड़ा प्रस्ताव, गोल्डन अपॉर्चुनिटी सामने आने के बाद भी उसने अपनी वफादारी छोड़ी नहीं। अरे किसके प्रति वफादारी? वो पहले देखो, और उसको बदले में फिर मिला क्या? तो इसलिए हमको लगता है बेचारा कर्ण। यहां पर हम सबसे पहले ये सारे उदाहरण, फिर हमको हमारा उदाहरण लग रहा है कि चैतन्य महाप्रभु वो भी हमारे सामने ऐसा प्रस्ताव लाकर रखते हैं, और कई बार हम फिर कर्ण की तरह बोलते तो नहीं है लेकिन मन में मेरी जो वफादारी इतने जन्मों से मैं इस भौतिक संसार में माया देवी को दे रहा हूं उसका क्या होगा? जो माया देवी ने मुझे राजा बनाया है, अंग का राजा, कौन से अंग का? इस अंग का। हम सब अंगराज हैं, और अंगराज हमको बनाया किसने? माया देवी ने। चाहे वो छिपकली का अंग हो, चाहे कॉकरोच का अंग हो, किसी देवता का अंग हो, या फिर नासिक में पैदा हुआ अंग हो, अंगराज, हम लोग सब अंगराज बने। और क्योंकि ये अंग का राजा हमको बना दिया तो इसकी वफादारी निभाने के लिए हम चैतन्य महाप्रभु को ठुकरा देते हैं कई बार। जानिया सुनिया बिष खाइनू, समझ गए होंगे आप लोग, जानते हुए जानते बूझते हुए लाओ वो विष दो मुझे, पीना है मुझे उसको। तो ये कर्ण की झूठी निष्ठा, दुर्योधन का द्वेष, दुर्योधन ने उसको भी बहुत से अवसर मिले। अब दुर्योधन के अवसर आप देखो, उसको जो अपॉर्चुनिटीज मिले, सबसे पहले तो बचपन से पांडवों का संग, और पांडव कौन है? जिनको भगवान ने चुना कि मैं अपना अधिकांश समय इनके सानिध्य में बिताऊंगा, ऐसे पांडवों का संग दुर्योधन को बचपन से मिल रहा था। मारने का प्रयास कर रहा था खाली, न केवल पांडवों का संग, भीष्म पितामह जो कि एक महाजन है उनका संग, महात्मा विदुर इनका संग, और यही नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण वो अपना विश्वरूप दिखा दिए दुर्योधन को, और वो भी अर्जुन को दिखाने से पहले। और ये दुर्योधन इतना ज्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कि इतने अवसर उसके पास थे अपने आप की सदगति के, इन सब को ठुकरा कर वो अड़ा रहा, मुझे मेरा हस्तिनापुर चाहिए, सुई की नोक जितनी पृथ्वी भी मैं नहीं दूंगा इन पांडवों को, पांच गांव तो दूर की बात है। और ये पांडव तो छोड़ो, अभी इस कृष्ण को बंदी बनाओ। कितना मूर्ख ये दुर्योधन था, विनाश काले विपरीत बुद्धि जिसको बोलते हैं। तो इतने सारे अवसरों को ठुकरा कर दुर्योधन ने गंवा दिए सारे अवसर, और अपने विनाश का और अपने पूरे कुरुवंश का। महात्मा विदुर ने, भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से कहा कि ये जो तूने पैदा किया है इस दुर्योधन को, ये दुर्योधन न केवल तेरे को मरवाएगा, न केवल तेरे पूरे 100 पुत्रों को मरवाएगा, ये पूरे कुरुवंश को मरवाएगा। और धृतराष्ट्र, अगला उदाहरण उनका है कि धृतराष्ट्र न केवल आंखों से अंधा था, बल्कि धृतराष्ट्र आध्यात्मिक रूप से भी अंधा था। धृतराष्ट्र की अंधी आसक्ति, भीष्म पितामह, महात्मा विदुर, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को सही सलाह दी, पर और यहां तक कि गांधारी ने धृतराष्ट्र से कहा कि ये जो मैंने पैदा किया है, ये जब पैदा हुआ तो गधे वो ढेंचू कर रहे थे, ढेंचू क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जब दुर्योधन पैदा हुआ तो गधे ढेंचू ढेंचू करने लगे, तभी गांधारी समझ गई कि मेरे 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 को कुलदीपक पैदा नहीं हुआ है, कुल नाशक पैदा हुआ है ये। तो धृतराष्ट्र, अब देखिए उसको नाम भी जो मिला है, जो कि राष्ट्र को प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत हो, वो धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र के लिए परम सौभाग्य, ये सब तो खैर भीष्म पितामह, महात्मा विदुर, ये सब तो थे ही, इनका संग, सत्संग इसको बोल सकते हैं हम, ऐसे महाजनों का संग तो उसे मिल ही रहा था, परंतु उसके सौभाग्य की पराकाष्ठा कब प्राप्त हुई उसे, जब लाइव भगवद गीता का रेसिटेशन संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को, वो सब भगवद गीता धृतराष्ट्र एक शुद्ध भक्त के मुखारविंद से डायरेक्ट सुने, उसके बाद भी धृतराष्ट्र वैसा का वैसा रहा, कुत्ते की पूंछ जिसको कहते हैं। प्रथम अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि इन कुरुवंशियों को मारने के बदले यदि मैं एक भिक्षुक का जीवन भी जीऊं तो भी मेरे लिए वो स्वीकार है। आप जानते हैं कि अर्जुन ने अचानक ये क्यों इसको स्वीकृति दे दी कि मैं भिक्षु का जीवन जीने के लिए राजी हूं, इसके पीछे एक इतिहास है, हमारे आचार्य इसका इतिहास बताते हैं। व्हाई अर्जुन कंसिडर्ड टू लिव लाइक अ बेगर, इट वॉज वेरी अनयूजुअल। ठीक है, उनको माफ कर देना, हस्तिनापुर दे देना, लेकिन भिक्षु का जीवन जीना, तो इसके पीछे इतिहास ये है कि जब पांडव उनको वनवास दिया गया 13 साल का, तो 13 साल के वनवास में पांडव अपना वनवास बिता रहे हैं, धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में अपने बेटे के साथ बैठा हुआ है, 100 पुत्रों के साथ बैठा हुआ है, शकुनी गांधारी इन सब के साथ वहां पर बैठा हुआ ऐशो आराम में, उसको चैन नहीं था। पांडवों को वनवास दिलाने के बाद भी धृतराष्ट्र को चैन नहीं था। उसने समाचार भिजवाया, प्रस्ताव, उसने प्रस्ताव भिजवाया। जब कुछ चंद वर्ष बीत चुके थे उनके वनवास के, उसके बाद उसने धृतराष्ट्र ने ये प्रपोजल अपने मैसेंजर के साथ भिजवाया। प्रपोजल क्या? कि जाकर पांडवों को ये कहो मेरा संदेशा कि इतने वर्षों से तुम एक भिक्षुक का जीवन जी रहे हो, तो फिर आगे भी कंटिन्यू करो 13 साल बाद। कितना निर्लज्ज ये धृतराष्ट्र था, देखो, बेशर्म जिसको बोलते हैं, कि बोलता है कि व्हाई डोंट यू कंसिडर लिविंग लाइक अ बेगर इवन आफ्टर 13 इयर्स, बिकॉज यू आर एनीवेज लिविंग लाइक अ बेगर, सो प्लीज कंटिन्यू फर्दर। और उसके साथ साथ बोलता है, माय डियर दुर्योधन हु इज नॉट अकस्टम टू लिव लाइक अ बेगर, ही इज अकस्टम टू लिव अ रॉयल लाइफ, सो प्लीज अलाउ हिम टू कंटिन्यू लिव लाइक अ रॉयल लाइफ। उसको शर्म भी नहीं आ रही थी ये प्रपोजल देने के लिए। और उसके बाद उसने एक और प्रपोजल दिया, मतलब धृतराष्ट्र, मैं जब ये पढ़ा, मैं तो, मेरे को धृतराष्ट्र पे गुस्सा इतना आ रहा था, शर्म नहीं आती। तो एक तो ये प्रपोजल भी दे रहा है, हिम्मत देखो उसकी, और उसके ऊपर वो ये कहता है, assuming that Pandavas will accept this proposal, उस कितना होपफुल भी था वो, ये कहता है, if you have decided to live like a beggar, please don't beg in Hastinapur, because my dear Duryodhan will feel bad. Instead, you can beg in Dwarka. You will get more alms, because your Krishna will be there. तो एक तो प्रपोजल भेजता है, ऊपर से वो इतना होपफुल है कि इस प्रपोजल को भीम स्वीकार भी कर लेंगे, और उसके आगे फिर वो सेकेंड प्रपोजल भेजता है, डोंट बेग इन हस्तिनापुर बिकॉज माई डियर दुर्योधन विल फील बैड। तो ये जब पांडवों ने ये प्रपोजल सुना, तो भीमसेन ने गदा उठा ली। भीमसेन ने कहा, अभी जाकर इसको मैं जवाब देता हूं। तो अर्जुन, हम आते हैं प्रथम अध्याय भगवद गीता, कि अर्जुन ने जब ये प्रस्ताव रखा भगवान के सामने, तो उस प्रपोजल को याद रखते हुए कि धृतराष्ट्र ने यह प्रपोजल दिया था, अर्जुन वॉज कंसिडरिंग दैट रिडिकुलस प्रपोजल ऑफ धृतराष्ट्र, फर्स्ट चैप्टर ऑफ गीता। तो सोचो भगवान को कितना, जब भगवान अर्जुन को कहते हैं यू आर फूल नंबर वन बिकॉज यू आर कंसिडरिंग द प्रपोजल ऑफ अ बिगर फूल देन यू धृतराष्ट्र। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश पंडित। तुम अपने आप को पंडित बोल रहे हो, पंडित के शब्द तुम कह रहे हो, तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। यह है गीता की शुरुआत, भगवान बोलना शुरू करते हैं। तो हमारे जीवन में यदि गीता की शुरुआत हमें करनी है, तो रेडी हो जाओ क्या सुनने के लिए, कि हम अव्वल दर्जे के मूर्ख। हम लोग कौन है? अव्वल दर्जे के मूर्ख। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा सौभाग्य भगवत धाम जाने का, हम ठुकरा ठुकरा कर इस भौतिक संसार में सड़ते आ रहे हैं। तो धृतराष्ट्र की अंधी आसक्ति और धृतराष्ट्र की अंधी आसक्ति को दृष्टि दी विदुर ने, जब उसके सारे पुत्र मारे गए, उसके पश्चात वो हस्तिनापुर में अब भीम द्वारा फेंके गए टुकड़ों को खा खा कर जी रहा था, हस्तिनापुर को फिर भी छोड़ना नहीं चाहता था, ऐशो आराम की जिंदगी फिर भी छोड़ना नहीं चाहता था। विदुर आए, विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा, धृतराष्ट्र अब तो शर्म कर, कि जिन पांडवों को, जिस भीम को तू षड्यंत्र में मारना चाहता था अलग अलग तरीके से, उसी के फेंके गए टुकड़ों पर जी रहा है तू। अरे कोई स्वाभिमान है कि नहीं तेरा? सबसे बड़ा कलंकित क्षत्रिय तो तू ही पैदा हुआ इस द्वापर युग में। अपने आप को तू पुरुष मर्द कहता है, और विदुर खुद दासी पुत्र थे। तब जाकर बोलते ना, चमका धृतराष्ट्र को, चमका कि मुझे अब यहां से निकलकर वैराग्य का जीवन जीना चाहिए। तो कई बार हमको लगता होगा, क्या कितना दुर्भाग्यशाली धृतराष्ट्र, कर्ण, वो धोबी, ये सारे जो यादव, हम लोग अलग अलग श्रेणी में अलग अलग समय पे दिखाते रहते हैं, हमारे अंदर का कर्ण, हमारे अंदर का धृतराष्ट्र, हमारे अंदर के यादव, धोबी। इसलिए जो हमने आज का पॉइंट शुरू किया, इस्कॉन इज सक्सेसफुल डजंट नेसेसरली मीन आई एम ऑल्सो सक्सेसफुल। तो फाइनली ये जो इतने उदाहरण हमने लिए, आज हम इसी स्लाइड पर कथा को विराम देंगे। यादवों ने अपने सौभाग्य को गंवा दिया अभिमान के कारण, नलकुंवर मणिग्रीव ने अपने सौभाग्य को गंवा दिया नशे में धुत होने के कारण, मथुरा के धोबी ने सौभाग्य को गंवा दिया दुर्भाग्य के कारण, कर्ण झूठी निष्ठा के कारण, दुर्योधन द्वेष के कारण, और धृतराष्ट्र अपनी अंधी आसक्ति के कारण। हमारे अगले सिटिंग में हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि कैसे हमारे साधना भक्ति में ये अभिमान, नशा, दुर्भाग्य, झूठी निष्ठा, द्वेष और अंधी आसक्ति अवरोध बनते हैं परम सौभाग्यशाली बनने के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा प्रभु जी, वो मथुरा का धोबी का जो उदाहरण है उसमें एक्चुअली एक मतलब डायरेक्ट प्रश्न है और उसके पीछे लेसन का भी एक प्रश्न आता है। तो एक तो वो जानता नहीं था कि ये भगवान है यहाँ पे आए हुए, उसने हजारों साल तपस्या की थी और भगवान वहाँ पे आए थे, तो अगर उसे पता रहता तो शायद दे भी सकता था। ये एक डायरेक्ट प्रश्न आता है। और इनडायरेक्ट प्रश्न ऐसा कि जैसे इंग्लिश में कहावत है ना कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, तो ऐसे उसके पास एक बार आई तो वो चले गई तो वापस नहीं मिली उसे, हालांकि उसे लिबरेशन मिल गया होगा क्योंकि भगवान के हाथ से उसने मार खाया बाद में। तो हमारे भी जीवन में ऐसे कभी हिडन अपॉर्चुनिटी अगर आती है और हम उसे टुकरा देते हैं तो उस दुर्भाग्य से हम लोग कैसे बच सकते हैं, क्योंकि उसे भी वो हिडन अपॉर्चुनिटी थी उसके सामने, उसे पता नहीं था ये भगवान है।
देखिए हम ये नहीं कह सकते कि केवल इसके वजह से उसने भगवान का तिरस्कार किया। अगर यही बात होती तो भगवान कुब्जा के पास भी जाकर कुब्जा से मांगा था भगवान ने, तो भगवान ने उस कुबड़ी स्त्री, वो भी वही कार्य कर रही थी जो ये धोबी करता था, कंस की सेवक, वो कंस की सेविका, कंस के लिए उसने सब कुछ, वो फ्रेग्रेंसेस और चंदन और ये सब जो इकट्ठा उसने कर रखे थे कंस के लिए कर रखे थे। तो वहां पर भी कृष्ण बलराम जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किए, तो कुब्जा से जब मांगा तो कुब्जा ने स्वाभाविक रूप से हाँ हाँ आपके ऊपर सबसे ज्यादा ये शोभायमान लगेंगे ये चंदन और ये गंध वगैरह। तो यहां पर समझ में आता है कि कैसे फ्री विल का प्रॉपर यूज हुआ कुब्जा के कनेक्शन में और फ्री विल का मिसयूज हुआ ये मथुरा धोबी। तो बेसिकली फाइनली भगवान हमारे फ्री विल को टेस्ट करते हैं, और फ्री विल का टेस्ट भगवान कैसे करते हैं, इसी तरीके से करते हैं कि भगवान हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज लाकर देते हैं, जैसे कुब्जा के सामने और धोबी के सामने। और एक ही समय पर मथुरा की विजिट में ये दोनों किस्से हुए। तो भगवान जो अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ प्रकट हुए हैं, यदि ये मथुरा का धोबी भगवान के ऐसे सुंदरता से, उनके ऐश्वर्य से आकर्षित नहीं हो पाए, तो ये हम समझ सकते हैं कि कितना उसके अंदर उसके पाप का आवरण था कि सामने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान खड़े हैं और वो आकर्षित नहीं हो पाया, तो उसके पाप के आवरण के वजह से। तो ये कारण, और दूसरा कारण हमारे आचार्य बताते हैं, ये तो मैं अपने तरफ से मैं जो मेरी समझ है मैं बता रहा हूं, परंतु आचार्य ये कहते हैं कि उसने जब देखा कि ये दो बच्चे कंस के कपड़े मुझसे मांग रहे हैं, तो क्योंकि वो कंस का पर्सनल धोबी था तो उसका बहुत बड़ा पोजीशन था, हालांकि धोबी था लेकिन कंस का धोबी, तो उसका बहुत बड़ा नाम था, पोजीशन था, और इसलिए उस समय स्पर ऑफ द मोमेंट उसको लगा कि ये जो दो कपड़े मांग रहे हैं मेरे अभिमान को ठेस पहुंचाई ना, तो इंपल्सिव बनकर तुरंत तिरस्कार कर दिया कृष्ण बलराम का, ये सोचते हुए कि ये बच्चे, इनकी ऐसी हिम्मत, सबसे पहले तो डायरेक्टली मेरे को अप्रोच कैसे कर रहे हैं और वो भी ये मांग रहे हैं। तो उस फॉल्स प्राइड के वजह से वो पहचान नहीं पाया कि ये साधारण बच्चे नहीं है। तो ये दो कारण बताए गए उसका, और क्या था, हमारी हिडन अपॉर्चुनिटीज जब हमको मिलती है, एक्चुअली अपॉर्चुनिटी के ऊपर मैं अगली बार चर्चा करने वाला हूं, लेकिन हां भगवान वो जो श्लोक है 10.10 कि यदि हम सिंसियरली भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी, यदि हम सिंसियरली भगवान का कीर्तन भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो भगवान हमको वो बुद्धि देंगे हिडन अपॉर्चुनिटी को पहचानने की, सिंसियरिटी। फाइनली अगर हम सिंसियर हैं, सिंसियर मतलब वन हु कैन सी द सिन वेयर इट इज लाइंग एंड ऑल्सो द ऑपोजिट पायटी, सीयर ऑफ सिन, सीयर ऑफ पायटी, सिंसियर।
Hare Krishna Prabhuji, as you rightly said that we keep on adding our additionals during this life of bad habits and certain things, so also we carry certain things from our earlier lives, the sins or the bad habits, अथवा वेर इट इज शोन द्वेष काम क्रोध एंड ऑल दीज थिंग्स दे आर ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग इवन बिफोर वी आर बॉर्न हाउ कैन वन वॉश देम ऑफ ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम एंड हाउ शुड वन प्रैक्टिस दिस ऑफ कमिंग आउट ऑफ दिस सिंस बिकॉज वन साइड वी हैव कम विथ आवर कर्मास सेकेंड वी आर एडिंग एडिशनल्स whether we like it or we don't like it. The societal pressure is like that.
We cannot wash. Krishna will do that. Krishna will do that. We have to only show to Krishna that we want these conditionings to be washed. The problem is not with the sins and conditionings. The problem is we loving them. The problem is when we become the lovers of our disease, that is the problem. So when Krishna says sarva dharman parityajya aham tvam sarva papebhyo, Krishna is giving directly, he is saying I'll wash off all your previous sins and conditions, but are you willing to hand over the detergent to me to wash it off? Even he has the detergent, but are you giving the NOC first from your side? Hamara kya hai, hum NOC nahi dete, aur kai baar dete bhi hain to bhagwan ko kehte hain, usme lik dete hain, bhagwan itna itna sab nikal dena, isko thoda rakh dena in case baad mein future mein kabhi kaam aayega, thoda sa kaam vasna rakh dena, thoda sa ग्रीड, थोड़ा सा ग्रीड इधर रख देना, पूरा मत निकालना मगन, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा, अब मेरे हिसाब से, मेरे को देखते हुए. तो बिकॉज वी हैंग ऑन टू अवर कंडीशनिंग्स, सो वॉशिंग ऑल दीज कंडीशनिंग्स एंड प्रीवियस सिंस वी कैन नॉट डू, इट्स नॉट आवर जॉब. कृष्णा द होली नेम, but the million dollar question is, are we really wanting these conditionings to be washed off? So that is the most important question. Jaise wo Kailash ki story bata rahe the, kon maharaj Chandramouli maharaj, Kailash ki story ki Narad Muni aa rahe hain, lekin wo keh raha hai थोड़े समय बाद, थोड़े समय, अभी ये बाकी, अभी ये बाकी, ये बाकी. वैसे ही हमारी भी सबकी वही स्टोरी है कि अपॉर्चुनिटीज आते जा रहे हैं, नारद मुनि आ जाके अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, लेकिन हम बोलते हैं कल, परसों, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल, अगले जन्म. सो बिकॉज वी आर अटैच टू आवर कंडीशनिंग्स, दैट इज कीपिंग अस इन दिस मटीरियल वर्ल्ड. And we are not allowing Krishna to wash. Krishna wants to, but we are not allowing. So the question should be asked to us only. When will we allow Krishna to wash our conditionings? Anything else?
हरे कृष्ण प्रभुजी. प्रभुजी मणिग्रीव और नलग्रीव का आपने उदाहरण दिया कि वो नशे के कारण उनसे गलती हो गई. तो एक बार एक भक्त ने कहा था कि सोमरस जो है हेवनली प्लैनेट्स में वो यहाँ,
नहीं नहीं नहीं, हम कौन से नशे की बात कर रहे थे? मदान, मद, हनी, हनी नहीं, मद हनी नहीं है. उनको इस बात का नशा था कि हमारा तो बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता, हम कुछ भी कर सकते हैं, उस बात का नशा था उनको. और उसके वजह से जो भी कुछ हुआ कि नारद मुनि का तिरस्कार उन्होंने कर दिया. और हाँ, हमारे आचार्य कहते हैं कि वो जो स्त्रियां, उनका उद्धार हो गया बहुत जल्दी, क्योंकि उनके अंदर वो नशा नहीं था. उन्होंने तुरंत अपनी गलती का एहसास कर लिया और वो तुरंत अपने आप को संभाल लिए, वस्त्र पहन लिए उन्होंने. तो उनका उद्धार जल्दी हो गया, ये वर्णन है दामोदर लीला में। लेकिन इनको 100 वर्ष तक उधर खड़े रहना पड़ा, तो वो नशा था उनको। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की
जय, शिक्षाष्टकम प्रभु की
जय, हरे कृष्ण कोटि वैष्णव वृंद की जय। कुछ